सबाहत अशरफ का ताल्लुक़ कराची से है, लिखना उनका पेशा है कि वो टेक्निकल राइटर हैं, पाकिस्तान में सहाफ़त से वाबस्ता रहे और यहाँ अमरीका में भी अखबारात के लिए लिखते हैं। आजकल अपने ब्लॉग ifaqeer.blogspot.com पे काफ़ी वक्त लगा रहे हैं। अमूमन अंग्रेज़ी में लिखते हैं मगर वो आज हमें उर्दू में एक मज़मून सुनाएंगे जो उन्होंने साहिर को खराज तहसीन पेश करने के लिए लिखा है। तशरीफ़ लाइए।
थैंक यू। आदाब। सबसे पहले तो हमीदा साहिबा और बुज़ुर्गों का बहुत शुक्रिया कि ऐसी महफिलें जमाते हैं। मेरा भी जैसे जो नौजवान पीछे बैठे हैं कुछ, उनके तरह हमने भी उर्दू से शनासाई और लगाव हमारा ऐसी महफिलों से बना है। अपने बुज़ुर्गों के घुटनों के करीबी हमने उर्दू सीखी है और ये महफिलें जो हैं ये हम जैसों के लिए बड़ी ज़रूरी हैं कि हमारी एक सकाफ़त और उर्दू से लगाओ हमारा ताज़ा रहता है। और ये तकरीबन पहला ऐसा मौका है कि मैं उर्दू में महफिल से ऐसे मुखातिब हूँ और कुछ लाजिम जी खैर ताल्लुक़ पूछ लीजिए पीछे से सबका, वही लुधियाने लखनऊ और इलाहाबाद से नज़र आएगा आपको। लेकिन मैं लाजिम समझता हूँ कि पहले पेशगी माफ़ी मांग लूँ। अक़ल ये कहती है कि अगर मेरी कोई बात आपको मयार से नीची लगे या गलत लगे तो माफ़ कर दीजिएगा। और सदर साहब की इजाज़त से शुरू करते हैं। आज हम सब यहाँ साहिर लुधियानवी नामी एक शायर को याद करने जमा हुए हैं और उससे भी ज़्यादा साहिर की शायरी, साहिर जो शायरी का एक ख़ज़ाना हमारे लिए छोड़ गए हैं उसमें टटोलने के लिए जमा हुए हैं कि हमें ये शायर, ये अदीब, ये मुफक्किर क्या असबाक मुहैया करता है कि जिनसे हम अपनी ज़िंदगी कुछ सहल तरीके से या कम अज़ कम हमारी ज़िंदगी बर्दाश्त के लायक हो जाए। क्योंकि छोटा मुंह बड़ी बात, यहाँ बुज़ुर्ग बैठे हैं मगर मेरे नज़दीक इंसानी ज़िंदगी और मुआशरे में अदब और अदीब का सबसे अहम किरदार यही होता है। अदीब या कोई भी फ़नकार हमें अपने अदब, अपने फ़न पारों के ज़रिए ज़िंदगी गुजारने के लिए सामान मुहैया करता है। और जिस फ़न को हम शायरी कहते हैं वो इस काम के लिए ख़ास तौर पे मौजू है, क्योंकि शायरी का औज़ार जो है वो अल्फाज होते हैं और रंगों भरी नक्श निगारी के ज़रिए बात हर इंसान तक पूरी तरह से नहीं पहुंच पाती है, लेकिन अल्फाज तकरीबन हर इंसान तक रसाई रखते हैं। अब उसमें बुज़ुर्गों ने बताया है कि कुछ एकदम खालिस लातों के भूत भी पाए जाते हैं, लेकिन ज़्यादातर इंसान अल्फाज का असर लेते हैं अपने ऊपर। तो इस सिलसिले में इजाज़त दें तो एक वाक़या सुनाऊं। हम लोग कॉलेज में होते थे, कॉलेज का दौर हमारा कराची में गुजरा है। वहाँ हमारे एक बुज़ुर्ग थे थोड़े से हमसे उम्र में थोड़े ही आगे, जो कमाल की शायरी करते थे। एक तेज़ाबी सा रंग था उनकी शायरी में और जैसे कि कॉलेज में अक्सर होता है उनकी शायरी ज़्यादातर रोमानी होती थी। तो एक दिन एक और दोस्त ने हमसे पूछा कि वो कौन शख्सियत हैं जिनकी बदौलत भाई इतनी गज़ब की शायरी करते हैं, को बहुत अजीम हस्ती होंगी। तो इस पे थोड़ा सा इस बात पे सोच में पड़ गया मैं कि क्या वाकई कोई बेनज़ीर शख्सियत थी जिन पे भाई ने दीवान के दीवान लिख दिए। क्या और भाइयों पे जब इश्क तारी हुआ तो उनका इश्क इतना गहरा, उतना सच्चा नहीं था क्या? क्या उनके माशूक उतनी अजीम या ऊंची हस्तियां नहीं होती थीं? बहुत इज्जत करते थे हम अपने शायर भाई की जज्बात, उनके एहसासात और गहराई का, मगर यकीन रखिए ऐसे हमने आशिक देखे हैं कि जिनकी एहसासात की गहराई का कोई सानी नहीं है, उसकी बराबरी नहीं की जा सकती। तो और जैसे कि कॉलेज में होता है ऐसे भी कुछ शायर हमारे भाई के पास आके शायरी लिखवा के ले जाते हैं, आप लोगों को याद होगा। ये सब सोचने के बाद मैंने दोस्त से ये कहा कि देखो, मेरे ख्याल से शायरी जिस शख्सियत के बारे में लिखी जाए या जिन एहसासात के नतीजे में लिखी जाए, कही जाए, उससे शायरी का मयार नहीं बनता है, बल्कि लिखने वाले की, शायर की अपने तजुर्बात, ख्यालात और एहसासात को लफ्ज़ों में ढालने की सलाहियत اس کا آپ زور قلم کہہ لیجئے یا خوبی قلم کہہ لیجئے، اس کا مظہر ہوتا ہے شاعری کا معیار جو ہوتا ہے. تو جیسے میں پہلے کہہ رہا تھا کہ شاعر ہمیں کچھ سامان دیتا ہے زندگی گزارنے کے لیے، اور وہ سامان اس صورت کا بھی ہو سکتا ہے کہ آنے والے مرحلوں کے بارے میں ہمیں خبردار کرے، یا جو ہمارے اوپر بیت رہی ہو، جو جس کو شاعر شاعر نے حوادث کہا ہے، ان خیالات کو جو احساسات ہمارے ہوتے ہیں ان کو منطقی شکل میں ڈھال کے اس لائق ہمیں کرے کہ ہم ان کو اور لوگوں کو سمجھائیں کہ ہم پہ بیت کیا رہی ہے، یا بلکہ کبھی کبھی تو خود اپنے آپ کو سمجھانے کے لیے، بات کو ذہن میں بٹھانے کے لیے بھی ہم شاعری کا، کچھ لوگ اور فن کا سہارا لیتے ہیں. اب اس حوالے سے جو میرے خیال سے خاصے لوگوں کو ایوائٹ ملا ہوگا اس محفل کا، اس پہ اگر آپ دیکھیں تو وہ ایک شعر درج ہے جو تلخیاں کے بھی سرورق پہ ہے، کہ دنیا نے تجربات و حوادث کی شکل میں جو کچھ مجھے دیا ہے وہ لوٹا رہا ہوں میں. ہر انسان کے لیے یہ تجربات و حوادث کا یہ سلسلہ چلتا رہتا ہے، زندگی بھر چلتا رہتا ہے، اور ساحر جیسے ادیب ان کو اپنے فن، اپنی شاعری کے ذریعے قلم بند کر کے پیش کرتے ہیں، تاکہ ہم سب جو شاعر نہیں ہیں، یا کم از کم اس پائے کے شاعر نہیں ہیں، کیونکہ شاعر ہونے کا گمان تو ہم میں سے خاصے لوگوں پہ گزرا ہے، بلکہ کچھ پہ ابھی بھی ہے، کچھ آتا جاتا ہے، ہم لوگ عین اسی طرح جیسے وہ دوست کالج میں بھائیوں سے شاعری لکھواتے تھے، اسی طرح سے ہم عظیم شاعری اور ادب کا سہارا لیتے ہوئے اپنے تجربات اور احساسات کو سمجھتے ہیں، سمجھاتے ہیں. تو اس سلسلے میں، اس حوالے سے، ساحر اور ہمارا پرانا ساتھ ہے. میں ان لوگوں میں سے ہوں کہ جن کا بچپن 70 کی دہائی میں گزرا، ایک عجیب سا ماحول تھا، زندگی کے حوادث اکثر، لیکن ایسا تھا جیسے بھائی نے کہا 70 میں ان کی شاعری اتنی نہیں تھی، لیکن ہمارا بھی یہ حال ہے کہ زندگی کے حوادث اکثر بے ساختہ ساحر کی شاعری کو ہی ہمارے زبان، قلم اور اب کی بورڈ پہ لے آتے ہیں. وہ کبھی کبھی ہمارے دل میں خیال آتا ہے کہ زندگی کسی کی نرم چھاؤں میں گزرنے پاتی تو شاید آپ بھی ہو سکتی تھی، یا کسی ٹریول ایجنسی میں تاج محل کی تصویر دیکھ کے وہی دریا کا کنارہ، وہی منقش در و دیوار، اسی محراب، اسی طاق کا ذکر پھر ذہن میں گونجتا ہے، یا پھر کبھی ضد چڑھ جائے تو ضد کے عالم میں یہ بات ذہن میں زور سے گونجتی ہے کہ لے دے کے اپنے پاس فقط ایک نظر تو ہے، کیوں دیکھیں زندگی کو کسی کی نظر سے ہم. مگر ہمارے ہم اثر شخصیات کی ساحر سے آشنائی سب سے پہلے، جیسے ارند چوپڑا صاحب نے کہا کہ سب سے پہلی شناسائی ہماری ساحر اور اس کے ادب سے کسی اور طرح سے ہوئی تھی، مطلب کتابوں سے نہیں یا شاعری سے نہیں. اور یہ بات ادبی ماحول میں ہو سکتا ہے تھوڑی گرا گزرے، مگر اردو شاعری کے اس عظیم ستون سے، بلکہ بہت سارے لوگوں کے لیے تو معیاری اردو شاعری سے ہماری پہلی واقفیت فلموں میں ساحر کے گیت اور گانوں کی شکل میں ہوئی. مگر فلمیں، گانے، گیت اور ہماری اردو اور ہندی بولنے والی دنیا میں یہ چیزیں کثرت سے پائی جاتی ہیں، بہت ہیں گیت، غزل، گانے، قوالیاں، ان کے ریلے لگے ہوئے ہیں ہمارے، جس کو پاپ کلچر کہتے ہیں اس میں. اور بہت شاعروں نے، جس میں ہر صنف کے اردو کے شاعر، اردو اور ہندی کے گیت نگار، کوی سب شامل ہیں، مطلب لفظوں کی قلابازیاں کے نمونے لگے ہوئے ہیں، موسیقی پہ تکیہ کرنے والے ہزاروں شاہکار ہماری سماعت کے لیے پیش کیے گئے ہیں، اور اس میں اکثر اردو کے ثقیل لفظ، اور حتیٰ یہ کہ غالب کی شاعری کے ٹکڑے، یا جن کے ہم عام فہم زبان میں ٹوٹے کہتے ہیں، وہ بھی شامل ہیں. مگر یہ سوچئے کہ ابھی کچھ 5 مہینے پہلے کی بات ہے کہ میرے کنبے پہ بطور رحمت ایک صاحبزادی کی ولادت ہوئی ہمارے یہاں. تو میں نے بہت مختصر سا پیغام، یعنی برقی پیغام، یعنی ای میل لکھا، اور وہ دنیا بھر میں گھما دیا، اس میں ان کی تاریخ پیدائش، وقت پیدائش اور دیگر چیزیں درج کیں. اور بھیجنے سے پہلے، جب آپ کبھی اگر عنوان لکھنا بھول جائیں، سبجیکٹ لکھنے سے پہلے سینڈ دبا دیں، تو وہ پوچھتا ہے کہ اس کا عنوان کیا ہوگا. تو بے ساختہ، بغیر سوچے سمجھے، मतलब लफ्ज उंगलियों से कीबोर्ड और कीबोर्ड से स्क्रीन पे तीन लफ्ज उतारा है कि मेरे घर आई। अब आप लोग, मेरे ख्याल से आधे लोग ये बात समझ गए कि ये इशारा किस तरफ है, मेरे घर आई एक नन्ही परी। और आजकल का दौर ऐसा है कि घंटों के अंदर कराची से हमारे एक और दोस्त अच्छी खासी शायरी खुद भी करते हैं, उनका जवाब आया जिसमें ये अंदेशा था कि यार अगली नस्ल को पता नहीं अपने बुजुर्गों से आशनाई हो पाएगी नहीं हो पाएगी। और ये सोच के फिर मैंने फिर से वही बेसाख्ता रिप्लाई दबाया और दो चार बल्कि दो लाइनें लिखी हैं और भेज दी। तो वो फिर वही साहिर की शायरी कि तू अपनी दुआएं बख्शने मैं अपनी वफाएं देता हूँ, जो अपने लिए सोची थी कभी वो सारी दुआएं देता हूँ। हमारे लिए मतलब हमारी पौध के लिए ज़िंदगी का पूरा सफ़र जो है वो वहाँ से शुरू होता है कि मैं पल दो पल का शायर हूँ, मैं पल दो पल का शायर हूँ, पल दो पल मेरी कहानी है। वहाँ से एक शुरू होता है कि हम एक छोटी सी चीज़ हैं, लेकिन फिर आहिस्ता आहिस्ता एहसासात का एक सफ़र शुरू होता है और वहाँ जाके ख़त्म होता है। जैसे हमारे एक दोस्त ने कहा था कि मैं हर एक पल का शायर हूँ, हर एक पल मेरी कहानी है। हवादिस की इस कतार में जिसको हम ज़िंदगी कहते हैं, जब हम शायरी सुनते हैं या पढ़ते हैं तो वो हमारे जहन में अक्सर उन तजुर्बात से मुंसलिक हो जाती है कि जिनसे हम गुजर रहे होते हैं उस वक्त, या जिनका हम जिनको जिन जिनकी जिनका इजहार उस शायरी से हम सही तौर पे कर पाते हैं। मगर बकौल शख्स से सिर्फ वही शायरी इस गहराई से हमारी हस्ती में रच बस जाती है जो तजुर्बात और आपबीती की भट्टी में सींची गई हो और फिर खूबी कलम और जोर बयां से एहसासात की एक कायनात को अल्फाज के कूचे में उतार लाए। और शायर का कमाल यह है कि उन्होंने पॉप कल्चर के मंगल बाजार में हिस्सा लेते हुए भी उर्दू शायरी की अदबी मयार और ख्यालात की गहराई का दामन नहीं छोड़ा, और इस जरिए से वो हमारी अदबी सकाफत और नए दौर के पॉप कल्चर के दरमियान राबता बने। और ये राबता मेरी हकीर नज़र में बहुत अहमियत रखता है। हम उर्दू के शहदाइयों के लिए भी और पॉप कल्चर हमारे खित्ते की आम जिंदगी की सेहत के लिए भी, इससे एक तरफ तो हमारे हम असर और हमसे आगे और पीछे की कुछ पौध के लोगों के लिए उर्दू और उर्दू अदब की पूरी अदबी कायनात तक रसाई का दरवाज़ा खुला, और दूसरी तरफ 21वीं सदी में MTV और सैटेलाइट की रंगीन महफिलों में उर्दू अदब और उर्दू बोलने वालों के लिए माइक्रोफोन तक दस्तरस यकीनी बनती है। शुक्रिया।
शुक्रिया सबाद अशरफ।